नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराकर छठी बार अंडर 19 वनडे क्रिकेट विश्व कप जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल और फिनटेक इकोसिस्टम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से बड़े सपने देखने, निडर रहने और जीवनियों से प्रेरणा लेने को कहा। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का ओडिशा के चांदीपुर में सफल परीक्षण। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में SIR के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने और बढ़ाई। सरकार ने लोकसभा में कहा, भारत ने सभी उचित अवसरों पर बांग्लादेश के साथ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा लगातार उठाया। और पाकिस्तान में इस्लामाबाद के एक शिया धार्मिक केंद्र पर आत्मघाती हमले में 31 लोग मारे गए और 170 घायल। अब समाचार विस्तार से। भारत ने छठी बार अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। जिम्बाब्वे के हरारे में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया। 412 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की टीम 311 रन पर ही सिमट गई।
वैभव सूर्यवंशी के 175 रन की पारी की बदौलत भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 411 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंद पर 15 चौके और 15 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 175 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान वैभव ने यूथ एक दिवसीय में सबसे तेज 71 गेंद पर 150 रन बनाने का कीर्तिमान अपने नाम किया। साथ ही वैभव का ये स्कोर किसी भी ICC एक दिवसीय प्रतियोगिता के फाइनल मैच का सबसे बड़ा स्कोर है। कप्तान आयुष महात्रे ने वैभव का साथ निभाते हुए 53 रन का योगदान दिया। भारत ने तीसरी बार अंडर 19 विश्व कप में 400 से अधिक रन बनाने का कीर्तिमान भी अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने वर्ष 2008, 2012, 2018 और 2022 में खिताब जीता था। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि भारत ने छठी बार खिताब जीता है। उपराष्ट्रपति ने वैभव सूर्यवंशी की रिकॉर्ड तोड़ पारी की भी सराहना की। और इस समय स्टूडियो में हमारे साथ है वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी। मोना, ये खिताबी जीत भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है?
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है क्योंकि इससे एक बार और साबित होता है कि जो भारत का दबदबा है क्रिकेट पर वो सिर्फ सीनियर स्तर पर या पुरुष क्रिकेट पर ही कायम नहीं है। अंडर 19 स्तर पर भी जो भारतीय टीम है रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग छठी बार जीता है और जो भारत की अगली पीढ़ी के सितारे हैं उनके लिए पेडिग्री जिसको कहते हैं कि यहीं से वो निकलते हैं। चाहे आप 2000 में युवराज सिंह को ले लीजिए, 2008 में विराट कोहली, रविंद्र जडेजा भी वहीं से निकले हैं, शुभमन गिल को लीजिए, उन्मुक्त चंद है, यश डुल है, तो बहुत सारे शुभमन गिल, यश डुल और बहुत सारे सितारे भारतीय क्रिकेट को अंडर 19 विश्व कप में दिए हैं। और एक विश्व कप जो T20 विश्व कप है वो कल से शुरू होने वाला है और उससे ठीक एक दिन पहले इस तरीके से भारत को जीत मिलना निश्चित तौर पर सीनियर टीम की भी हौसला अफजाई होगी।
बहुत संक्षेप में, वैभव सूर्यवंशी की जो धमाकेदार 175 रन की पारी, क्या क्या किस तरीके से देखती हैं आप इस पारी?
देखिए, IPL में जब वो आए थे राजस्थान रॉयल्स के लिए पूरे देश का ध्यान उनकी तरफ गया था और आज अगले महीने अपना 15वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और क्रिकेट के मैदान पर इतने बड़े उन्होंने कारनामे किए, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही है, जियो हो बिहार के लाला।
धन्यवाद मोना इस बातचीत के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के डिजिटल और फिनटेक इकोसिस्टम के लगातार विस्तार के बीच अधिक वित्तीय समावेशन, जिम्मेदारी के साथ प्रौद्योगिकी का उपयोग और महिलाओं की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। भुवनेश्वर में आज ब्लैक स्वान समिट में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की फिनटेक यात्रा को न सिर्फ नवाचार के लिए बल्कि समावेशन और स्त्री पुरुष न्याय के लिए भी याद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लाखों भारतीयों के लिए फिनटेक एक जीवन रेखा बन गया है।
India's fintech story should be remembered not only as a tale of technology but also as that of gender justice. Women constitute an important segment that requires focused attention for the promotion of fintech.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में विद्यार्थियों से बातचीत की। आज जारी एक वीडियो में प्रधानमंत्री ने परीक्षा के दौरान तनाव से निपटने के तरीकों पर विद्यार्थियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से बड़े सपने देखने, निडर रहने और जीवनियों से प्रेरणा लेने को कहा।
बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, जो भी सपना है उसके विषय में। कभी कभी क्या होता है, हमारे सामने वो बड़े बने वो ही पता चलता है, लेकिन वो भी तो कभी छोटे थे। आज पीएम आपको मिला होगा, वो पीएम कभी तो छोटा होगा ना। तो हम जब बायोग्राफी पढ़ते हैं तो लगता है नहीं भी ये बड़ा तो था, लेकिन पहले तो यहाँ था। फिर उसमें से आपको रिलेट करोगे, आप मैं भी ऐसा ही हूँ, ये तो मैं भी करता हूँ, वो ही करते ऐसा नहीं है, फिर आपका विश्वास बढ़ेगा। हाँ हाँ, यहाँ से शुरू कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी एक अलग शैली होती है और उन्हें अपनी तैयारी के तरीके पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा जीवन को आकार देने का माध्यम है, जबकि परीक्षाएं केवल स्वयं का मूल्यांकन करने का एक तरीका है।
अच्छे टीचर सर्वांगीण विकास के लिए पूरे सिलेबस का आपकी जिंदगी में क्या उपयोग है वो समझाते हैं। जो एग्जाम है वो हमें अपने आप को एग्जामिन करने के लिए एग्जाम है। अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए, और इसलिए हमने अपने आप को सीमित नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि जिंदगी सबसे ज्यादा उत्तम बने उसके लिए जीवन को तैयार करना है, और शिक्षा एक माध्यम है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, जिसका सफर होगा दिल्ली, तमिलनाडु, असम, गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक। बच्चों तक पहुंचेंगे, उनकी कहानियों से जुड़ेंगे पीएम मोदी। हर बार की तरह होंगे ढेरों सवाल फ्रॉम द यंग ब्राइट माइंड्स ऑफ इंडिया, जिनके मिलेंगे सारे जवाब। परीक्षा पे चर्चा में बच्चे सिर्फ जवाब नहीं, भविष्य का भरोसा साथ ले जाते हैं। तो देखना न भूलिए परीक्षा पे चर्चा 2026 का दूसरा एपिसोड 9 फरवरी सुबह 10 बजे डीडी न्यूज, नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस परीक्षण ने सभी परिचालनगत और तकनीकी मानक को सही साबित किया। ये परीक्षण सामरिक बल कमान की देखरेख में किया गया। भारत अमेरिका व्यापार समझौते सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
लोकसभा में आज फिर शोर शराबे के कारण कार्यवाही प्रभावित रही। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने और कार्यवाही चलने देने की अपील की।
आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। अभी तक 19 घंटे 13 मिनट सदन का समय बर्बाद हुआ है। 140 करोड़ जनता की अपेक्षा रहती है सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, लेकिन आप सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त कर रहे हैं।
हालांकि लगातार हंगामे के बीच कुछ ही मिनटों के भीतर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे लोकसभा की बैठक दोबारा शुरू होने पर स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रसाद तन्यटी ने विपक्षी सदस्यों से बार बार तख्तियां न दिखाने और सदन में व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया। इसके बावजूद हंगामा जारी रहा, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में कार्यवाही सुचारू रूप से चली। प्रश्नकाल और शून्यकाल बिना किसी व्यवधान के संपन्न हुए। भोजनावकाश के बाद उच्च सदन की बैठक दोबारा शुरू होने पर सदस्यों से संबंधित विधायी कार्यों को लिया गया। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
देश में अब तक कुल 8,47,00,000 से अधिक किसान पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2026-27 तक 11 करोड़ किसानों के लिए किसान पहचान पत्र जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। आज राज्यसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी दी।
अब हर एक किसान का भारत के एक अलग पहचान होगी। अब तक देश के 19 राज्यों में किसान रजिस्ट्री तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति पर है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है अब तक 8,47,00,000 से अधिक किसानों की आईडी बनाई जा चुकी है।
गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। श्री शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हीरानगर सेक्टर में गुरनाम और बोबियान सीमा चौकियों का दौरा किया। उन्होंने घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ द्वारा किए गए प्रबंधों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार सीमा सुरक्षा बल के लिए एक नई योजना लेकर आएगी।
बीएसएफ के जवान के कल्याण के लिए हम एक विशिष्ट योजना लेकर आएंगे और पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी का जो काम है उसको तकनीक के आधार पर मॉडर्नाइज कर आपकी सहायता कैसे की जा सके, इसके लिए भी भारत सरकार बहुत बड़ी राशि खर्च करने वाली है।
इसके बाद श्री शाह ने लोक भवन जम्मू में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति बैठक की अध्यक्षता भी की। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। मतदाता अब 6 मार्च तक फॉर्म 6, 7 और 8 जमा करके अपना नाम जुड़वा और सुधार करवा सकते हैं या मतदाता सूची से नाम हटवाने का अनुरोध कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि राजनीतिक दलों ने समय बढ़ाने की मांग की थी।
27 जनवरी को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य के जो राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में, और उसमें किसी दल द्वारा ये कहा गया कि ये समय बढ़ना चाहिए दावा आपत्ति का भी और नोटिस जारी होकर उसका जवाब लेने का भी, और सभी दल इससे सहमत थे। और इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग ने इस पर एक निर्णय लेके ये बताया कि जो हमारा 6 फरवरी आज जो अंतिम दिवस था दावा आपत्ति का, ये अब 6 मार्च हो गया।
सरकार ने कहा है कि भारत ने सभी उचित अवसरों पर बांग्लादेश के साथ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा लगातार उठाया है। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि ये मुद्दा पिछले साल अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ अपनी बैठक के दौरान उठाया था। पिछले साल फरवरी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन के साथ अपनी बैठक के दौरान ये मुद्दा उठाया। सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित खबरों पर नजर रख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से क्वालालंपुर की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों पक्ष अपने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने सहित संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा करेंगे।
कल का सबसे बड़ा आकर्षण प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय से मिलना होगा। सलामत दत्तांग मोदी जी के नाम के इस कार्यक्रम में करीब 15,000 लोगों के आने की उम्मीद है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया जाएगा। फ्यूजन और एलईडी डांस, गाने बजाने जैसे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। माइंस इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होने वाला यह आयोजन भारतीय समुदाय की संस्कृति की झलक दिखाएगा। मलेशिया में भारतीय समुदाय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा पीआईओ समुदाय माना जाता है। इसके बाद रविवार को प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत होगी और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, क्वालालंपुर।
भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार का बजट तुष्टिकरण और असंतुलित प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसे के लिए 5,713 करोड़ रुपए, इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए 1,400 करोड़, यानी उद्योग और विकास के लिए वाणिज्य के लिए 1,400 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,713 करोड़, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 217 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,700 करोड़, साइंस और रिसर्च के लिए सिर्फ 82 करोड़।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज एक शिया धार्मिक केंद्र पर हुए आत्मघाती हमले में 31 लोगों की मौत हो गई और 170 लोग घायल हो गए हैं। ये धमाका शहजाद नगर क्षेत्र के तरलाई इमाम बारगाह में हुआ। इस वर्ष जनवरी महीने में घरेलू स्तर पर फॉस्फेट और पोटेशियम उर्वरकों का उत्पादन बढ़कर 15.76 लाख मीट्रिक टन हो गया है। ये देश में PNK उर्वरकों का अब तक का सबसे उच्च मासिक उत्पादन है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराकर छठी बार अंडर 19 वनडे क्रिकेट विश्व कप जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल और फिनटेक इकोसिस्टम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से बड़े सपने देखने, निडर रहने और जीवनियों से प्रेरणा लेने को कहा। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का ओडिशा के चांदीपुर में सफल परीक्षण। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में SIR के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने और बढ़ाई। सरकार ने लोकसभा में कहा भारत ने सभी उचित अवसरों पर बांग्लादेश के साथ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा लगातार उठाया। और पाकिस्तान में इस्लामाबाद के एक शिया धार्मिक केंद्र पर आत्मघाती हमले में 31 लोग मारे गए और 170 घायल। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।